हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। हम लोग आज 10वां अध्याय डिस्कस करने वाले हैं भगवद गीता का। 10वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्य का बखान करते हैं कि किस प्रकार से उनका ऐश्वर्य इस पूरे संसार में फैला हुआ है, उसके बारे में भगवान बताते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। तो हम लोग थोड़ा सा पहले 9th चैप्टर जो हम लोगों ने पिछले क्लास में लिया था, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग रिकैप करेंगे और उसके बाद फिर हम 10th चैप्टर पे आएंगे। तो 9th चैप्टर 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला ज्ञान, पहले 3 श्लोक, फिर 4 नंबर श्लोक से लेकर 10 नंबर श्लोक तक भगवान अपने अचिंत्य संबंध के बारे में बताते हैं। 11 से 25 में भगवान अन्य उपासकों के बारे में बताते हैं, देवी देवताओं के बारे में, जो उनकी उपासना करते हैं या जो ब्रह्म की उपासना करते हैं उनके बारे में बताते हैं। और अंत में भगवान 26 नंबर श्लोक से लेकर 34 नंबर श्लोक तक लगभग 9 श्लोकों में भगवान भक्ति की महिमा बताते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये अध्याय था। इस अध्याय का नाम ही परम गुह्य ज्ञान था, मोस्ट सीक्रेट नॉलेज। तो जब हमने जाना कि जो कर्म योगी होता है, जब वो शुद्ध हो जाता है तो ज्ञान के स्तर पर आ जाता है, और जब ज्ञान के स्तर पर आके वो ज्ञान योगी बन जाता है तो वो खोज करता है ज्ञान के द्वारा और अंत में जानता है कि परमात्मा की शरण लेनी चाहिए, वही परम सत्य हैं। और इस तरह वो ज्ञान योग छोड़ के अष्टांग योग करके परमात्मा की शरण लेता है, उनके ऊपर ध्यान करना शुरू करता है। तो भगवान ने 8वें अध्याय में अष्टांग योगी अगर वो वैकुंठ जाना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भगवान ने कई चीजें बताई। भगवान ने बताया कि एक विशेष समय पे उसको शरीर छोड़ना होगा, दिन में शरीर छोड़ना होगा, उत्तरायण में शरीर छोड़ना होगा, स्पेसिफिक टाइम में शरीर छोड़ना होगा। अगर इस तरीके से करेगा तो वो उच्च लोकों में जाएगा, भगवान के धाम भी जा सकता है, वैकुंठ लोक में जाएगा। तो बहुत सारे नियम भगवान ने उस टाइम पे बताए। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर जुलाई के बाद उत्तरायण, जब दक्षिणायन शुरू हो जाता है, उस समय शरीर छोड़ेगा कोई अष्टांग योगी तो वो वैकुंठ नहीं जा पाएगा। तो ये कई सारी चीजें उन्होंने बताई। साथ साथ में उन्होंने बताया कि अगर आत्मा जो है नीचे के छिद्रों से निकलती है, ऊपर के छिद्रों से ना निकल के नीचे के छिद्रों से निकलेगी तो उसको मनुष्य का शरीर भी नहीं मिलेगा, उसको जानवर का शरीर में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए वो लोग जो अष्टांग योगी होते हैं वो नीचे के जो 2 छिद्र हैं उनको बहुत ध्यान से बंद करके रखते हैं, जिससे कि वो उस आत्मा जो है उस जगह से ना निकले, और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं, आत्मा को कपाल तक लाते हैं और वहां से शरीर त्यागते हैं, वो भी स्पेसिफिक टाइम पे। फिर उनकी जैसी इच्छा रहती है, स्वर्ग लोग जाना चाहते तो स्वर्ग लोग, सत्य लोग जाना चाहते तो सत्य लोग, ब्रह्म लोग जाना चाहते तो ब्रह्म लोग, अगर वैकुंठ जाना चाहते तो वैकुंठ लोग वो जा सकते हैं। भगवान ने आगे कहा, लेकिन अर्जुन तुम चिंता मत करो, चूंकि तुम भक्त हो इसलिए भक्त के लिए ये सारे नियम नहीं है। तुम भक्ति करो, तुम श्रवण करो, तुम कीर्तन करो, तुम मेरा स्मरण करो, उसके द्वारा तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, उस तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था 9वीं भक्ति के बारे में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9वीं भक्ति जिसमें 9 प्रकार से कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है, चाहे तो कोई एक प्रकार से करे या चाहे सभी 9 प्रकार से करे, वो भगवान की भक्ति कर सकता है। हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। तो सार ये निकला था कि एक भक्त के लिए ये सारी चीजें जरूरी नहीं है कि किस समय शरीर छोड़ रहा है, किस तरीके से किस स्पेसिफिक समय में शरीर छोड़ रहा है, ये सारी चीजें उसके लिए जरूरत नहीं है। वो चाहे उत्तरायण हो, चाहे दक्षिणायन हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, वो जब शरीर छोड़ेगा तो भगवान के धाम ही जाएगा, तो वो वैकुंठ जाएगा, ये कंफर्म है अगर वो भगवान का भक्त है। अभी प्रश्न आता है कि क्या डिफरेंस है निष्काम कर्म योग में और भक्ति योग में। हमने देखा था ऑलमोस्ट ये सेम लगते हैं, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग। लेकिन निष्काम कर्म योग में, खास करके भक्ति योग में, एक निस्वार्थ प्रेम होता है भगवान के प्रति, भक्त के हृदय में बिना किसी इच्छा के। ये प्रेम जो है वो भगवान के लिए एक भक्त के हृदय में जो होता है, उस वो भक्ति योग में उसको मोटिवेट करता है भगवान की सेवा करने के लिए। लेकिन निष्काम कर्म योग में, निष्काम कर्म योग में क्या होता है, व्यक्ति जो है अपने कार्य को करता रहता है, जो उसका कार्य है वो वही कार्य को करता है, बस फलों को भगवान को अर्पित करता रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे एक माँ जो है वो अपने बच्चे के लिए पकौड़ा बनाती है, तो बहुत अच्छा तेल यूज करती है या फिर देसी घी यूज करती है और बहुत सुंदर तरीके से पकौड़े को बनाती है, प्रेम के साथ बनाती है, और वही पकौड़ा ट्रेन में भी मिलता है, ट्रेन में आप जब जाएंगे तो पकौड़ा पकौड़ा बेचते रहते हैं, तो हो सकता है वो जो पकौड़े का मटेरियल है, इंग्रेडिएंट्स है, वो 3-4 दिन पुराने हों और कौन से तेल क्या के बने हों आपको पता नहीं है। तो उन लोगों का ध्यान क्या है, ट्रेन वालों का, उनका ध्यान आपकी पॉकेट पे है, आपकी हेल्थ पे उनका ध्यान नहीं है, लेकिन जो माँ है वो जब बच्चे के लिए बनाती है तो उसके हेल्थ का ध्यान रखती है। तो जैसे एक माँ और वो वैश्य व्यक्ति जो कि ट्रेन में बेच रहा है, उसके बीच जो डिफरेंस है वही डिफरेंस है भक्ति योग और निष्काम कर्मियों के बीच में। भक्ति योगी यानी कि जो भक्ति है उसकी वो हृदय से होती है, जबकि निष्काम कर्म योगी जो होता है वो भले ही वर्क करता है, कुछ भी कार्य करता है, लेकिन अपने अपने कार्य के फलों को भगवान को अर्पित करता है। ये थोड़ा सा अंतर है। तो इस प्रकार भगवान 9th चैप्टर शुरू करते हैं और 9th चैप्टर के शुरू में ही बोलते हैं, इदम तुते गुह्यतमम, ये जो मैं तुमको ज्ञान देने जा रहा हूं ये तुमको इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम जो है अनुसूय वे, क्योंकि तुम क्या हो, मेरे से ईर्ष्या नहीं करते हो। अभी ये कौन सा ज्ञान था, हमने 9th चैप्टर जब डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि अभी भगवान इस चैप्टर में ज्ञान देंगे, ये ज्ञान देंगे, ज्ञान देंगे, परम गुह्य ज्ञान है, वो कौन सा ज्ञान था, हा? जो भगवद गीता 9वें अध्याय का सबसे अंतिम श्लोक है, क्या है वो, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये वाला जो श्लोक है यही भगवान ने बताया, ये परम गुह्य ज्ञान है। मेरे पीछे दोहराइए, मन मना भव मद भक्तो, मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त एवं, आत्मानं मत्परायणः, तो भगवान ने परम गुह्य ज्ञान क्या बताया, उन्होंने बोला कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त हो जाओगे। तो यही ज्ञान जो है ये भगवान बोलते हैं कि गुह्यतम ज्ञान है, कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो सेम ज्ञान आप देखेंगे 18वें अध्याय में जब हम पहुंचेंगे अंत में, 65 नंबर श्लोक जो है 18वें अध्याय का, सेम श्लोक भगवान ने रिपीट किया है थोड़ा सा शब्दों को इधर उधर करके, लेकिन ये तो जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के भक्त जो हैं वो भगवान के चिंतन में लगाएंगे अपने मन को, भगवान के भक्त बन जाएंगे, भगवान को नमस्कार करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे क्योंकि वो श्रद्धालु हैं। लेकिन अश्रद्धालु लोगों का क्या होगा, तो अश्रद्धालु लोगों को पुनः इस भौतिक संसार में वापस आना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा रॉकेट को भेजा जाता है, जब भी किसी सैटेलाइट को भेजना होता है तो रॉकेट के थ्रू भेजी जाती है सैटेलाइट, तो रॉकेट में आप जब उड़ते हुए देखते हैं तो रॉकेट के नीचे जो है आग लगी हुई रहती है, वो आग जितनी तीव्र होगी उतना जो है रॉकेट के जाने की संभावना रहती है। अगर वो आग जो है वो तीव्र नहीं है तो क्या होता है, तो फिर उसके वापस आने की संभावना हो जाती है। तो ठीक वैसे ही भगवान की भक्ति जिसकी जो है दृढ़ रहती है वो व्यक्ति भगवान के धाम जाता है, लेकिन जो अश्रद्धालु होते हैं, श्रद्धा रूपी आग जो है उनके अंदर नहीं जल रही होती उतनी अच्छे से, वो वापस इस संसार में आ जाता है। इसके बाद भगवान ने सृष्टि के बारे में बताया, भगवान ने बताया कि किस प्रकार से पूरी सृष्टि भगवान के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन भगवान इस सबसे मुक्त है, भगवान को सृष्टि में पर्सनली कुछ करना नहीं होता, हाँ कि लाओ पानी लेके आओ खाओ और चावल लेके आओ कुछ बनाना है, ऐसा करके भगवान को कुछ करना नहीं होता, भगवान पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट हैं, भगवान स्वतंत्र हैं। तो फिर कौन करता है, भगवान के शरीर से ही विस्तार होता है विष्णु और फिर बाद में देवी डेमी गॉड्स यानी कि देवताओं का, वो जो देवता होते हैं वो भगवान के ही अंश हैं, और वो लोग क्या करते हैं, इस सृष्टि का जो भी पालन है, जो भी इसका मैनेजमेंट है, वो लोग करते हैं। तो अभी ये बात कि सारे देवता भगवान के अंडर में हैं, भगवान के अंडर में कार्य करते हैं, ये बात बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो लोग उन्हीं देवी देवताओं को मान लेते हैं कि यही भगवान है, जबकि देवी देवताओं के भी जो स्रोत हैं वो है भगवान कृष्ण। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो देवी डेमी गॉड्स यानी देवताओं को भगवान मान लेते हैं, हाँ, वो लोग जो हैं फंस जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें देवी देवताओं को रिस्पेक्ट देना चाहिए, पर हमें उनको सब कुछ नहीं मान लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप चीफ मिनिस्टर को जाके बोलिए कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, हाँ, तो चीफ मिनिस्टर केवल राज्य के लिए है, प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के लिए होता है। मान लीजिए आपके घर में एक पुलिस वाला, एक कांस्टेबल आए और एक जो है इंस्पेक्टर है, और आप कांस्टेबल को बोले अरे आप ही इंस्पेक्टर हैं, हैं, और उसके गले में माला डालें, उसके उसकी से अच्छे से जो है उसको रिसीव करें, तो उससे क्या होगा, हाँ, वो कांस्टेबल भी परेशान होगा और ये जो इंस्पेक्टर है वो भी कहेगा क्या पागल आदमी है। तो ये जो लोग नहीं जानते हैं वो देवताओं के चक्कर में फंस जाते हैं, और वो क्या होता है, पुनः इस संसार में आते जाते रहते हैं। तो जब हम गलत रास्ता अपनाते हैं तो क्या होता है, पतन होता है। गलत रास्ते में जाने से क्या होता है, पतन होता है। पतन का अर्थ क्या है, पतन का अर्थ यही नहीं है कि इस भौतिक संसार में रह जाते हैं, इवन अगर कोई स्वर्गलोक भी जाता है तो वो भी पतन ही है। स्वर्गलोक जाना है फिर वापस पृथ्वी लोक पे आना है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, जैसे पुण्य क्षीण होंगे पुनः मृत्यु लोक में उसको वापस आना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति मुझको पूर्ण रूप से समझ लेता है, जान जाता है कि मैं सारी चीजों का स्रोत हूं, सब कुछ मेरे से निकल रहा है, मैं सारे चीजों का सार हूं, एसेंस हूं, जैसे कि मैं पानी का टेस्ट हूं, मैं ही सूर्य का प्रकाश, सूर्य के द्वारा प्रकाश फैला रहा हूं, मैं ही चंद्रमा भेज रहा हूं, मैंने ही ये जो दिमाग लोगों का बनाया हुआ है, ये सारी चीजें मैंने बनाई हुई हैं और ये सारा कंट्रोल मेरे पास है, जो इस बात को समझ लेता है वो मेरे पास आ जाता है। तो इस प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं उनका भगवान के प्रति अटूट विश्वास होता है, जिससे उनके हृदय में भगवान के प्रति आदर और भगवान के प्रति प्रेम जो है रहता है। उनके लिए, भगवान के भक्त के लिए कृष्ण सब कुछ है। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी, भगवान क्या है, उनकी गति भी है, उनका पालन पोषण करने वाले भी है, उनके साक्षी भी है। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से भगवान कृष्ण से संबंध रखता है तो वो हर व्यक्ति से, हर चीज से संबंधित हो जाता है, वो सब कुछ समझ सकता है, संसार में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, एवरीथिंग ही कैन नो। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति का अमेरिका के प्रेसिडेंट से जान पहचान है, संबंध है, तो अमेरिका का प्रेसिडेंट बता सकता है कि अमेरिका कैसे काम कर रहा है। ठीक वैसे ही अगर किसी व्यक्ति का भगवान के साथ संबंध है, जैसा कि अर्जुन का है, तो भगवान अर्जुन को सृष्टि के बारे में दो श्लोक बोलते हैं केवल, भूमिरापो अनलोवायो खम्मनो बुद्धि रेवचा अहंकार तीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा, और उसके बाद दूसरा श्लोक बोलते हैं कि जिसमें बताते हैं भगवान की जीव जो है वो इसको जो है भोग रहे हैं इस पृथ्वी, इस प्रकृति को। तो इन दो श्लोकों में भगवान अर्जुन को बताते हैं पराशक्ति और अपराशक्ति के बारे में, और अर्जुन सब कुछ समझ जाता है। तो ये भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, ये अगर हमने डेवलप कर लिया तो हमारा जीवन जो है बहुत इजीली जाएगा, बहुत स्मूथली चलेगा। तो जैसे कि हमने कल आपको, मतलब कल मतलब पिछली क्लास में हमने आपको नारद जी के बारे में बताया था कि किस तरीके से नारद जी पिछले के पिछले जन्म में एक गंधर्व थे, उसके बाद उनको श्राप मिला और वो एक दासी पुत्र बने, और दासी पुत्र बन के उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया, क्योंकि उनको परमहंसों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, उनका उच्चिष्ट प्राप्त हुआ था, उनका संग प्राप्त हुआ था, और उनके हृदय के अंदर बहुत गहरी इच्छा हुई भगवान की कथा सुनने को, तो कथाएं उन्होंने सुनी थी। इस प्रकार जब भगवान के प्रति उनका अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास हुआ, तो क्या हुआ, वो जो नारद जी थे, वो दासी पुत्र जो थे, वो अगले जन्म में उनको नारद का शरीर प्राप्त हुआ, जो कि भगवान की लीलाओं का हमेशा गान करते रहते हैं और उसमें बहुत आनंद प्राप्त करते हैं वो। तो इस तरीके से हमने बताया कि ये जो भक्ति है ये कितनी सुसुखम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये भक्ति कैसी है, बहुत सुख पूर्वक संपन्न की जाती है। सुख पूर्वक कैसे की जाती है, तो देखिए देवताओं की जो पूजा करते हैं उनको बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, अगर एक छोटी सी भी गलती हो गई तो पूरा गड़बड़। जैसे एक बार एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक यज्ञ किया, यज्ञ में वो चाहते थे कि ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो कि इंद्र को मार सके, ठीक है, लेकिन धोखे से वो क्या बोल गए, ऐसा पुत्र प्राप्त हो जिसको इंद्र मार सके, संस्कृत के श्लोक में थोड़ा इधर उधर हो गया, तो क्या हुआ, जो रिजल्ट था वो बिल्कुल उल्टा आ गया, जैसा वो चाहते थे उसके अगेंस्ट रिजल्ट आ गया। तो ऐसे ही देवी देवताओं की भक्ति में, देवी देवताओं की उपासना में ये संभावना बनी रहती है, लेकिन भगवान की भक्ति इतनी सुलभ है, इतनी सरल है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एकादशी के दिन मान लीजिए धोखे से कुछ खा लिया, धोखे से हाँ जानबूझ के नहीं, तो ऐसा नहीं भगवान कहेंगे अच्छा बेटा उस दिन तुमने अन्न खा लिया था ना, चलो 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 तुमको वैकुंठ नहीं लूंगा, नहीं ऐसा नहीं, भगवान उसको माफ कर देते हैं, भगवान अच्छी चीजों को देखते हैं, अच्छे गुणों को देखते हैं, उसकी कमियों को नहीं देखते। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, भगवान कहते हैं कि जो पत्र पुष्प फल इत्यादि मुझे अर्पण करता है किसके साथ, भक्ति के साथ, तदहम भक्ति उपरतम अस्नामी प्रयतात्मना, उसको मैं स्वीकार कर लेता हूं। इस श्लोक में 9.26 है श्लोक, इस श्लोक में भक्ति शब्द दो बार यूज किया गया है, यो में भक्त्या प्रयच्छति और तदहम भक्ति उपरतम। क्यों भक्ति को दो बार यूज किया गया है, इसका मतलब है केवल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि वो भक्त है, दिस इज द ओनली क्वालिफिकेशन ही शुड हैव, देयर इज नो नीड ऑफ एनी अदर क्वालिफिकेशन, ना तो कलर क्या है उसका, ना उसका शरीर क्या कैसा है, ना वो जाति क्या है उसकी, ना किस तरीके से बना, कुछ नहीं, कोई और क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बस भक्ति के साथ भगवान को भोग लगाना चाहिए। और यही चीज देवताओं के साथ बहुत कठिन है मैनेज करना। तो अभी कुछ लोग कभी कभी हमसे पूछते हैं प्रभु जी भगवान को भोग लगाने की क्या जरूरत है, हम तो वो तो परम ब्रह्म है, परम धाम है, उनको भोग लगाने की क्या जरूरत है। देखिए भगवान हमारे भोग के भूखे नहीं है, लेकिन हमको जरूरत है, हम अगर भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान की कृपा हमको प्राप्त होगी, इसलिए हमको भगवान को भोग लगाना। भगवान को तो कई जगह भोग लगता है, बहुत सुंदर सुंदर भोग लगाते हैं, 56 भोग लगाते हैं, हम लोग तो दाल चावल बनाते पता नहीं उसमें दाल में नमक सही से डाला कि नहीं डाला करके भगवान को भोग लगा दिया, लेकिन फिर भी भगवान उसको ग्रहण करते हैं और अपनी कृपा जो है उस भोग में डाल देते हैं, जिसको हम लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर दूसरे तरीके के लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं, अरे भगवान तो परब्रह्म है, निराकार उपासक है, उनको भोग देने की क्या जरूरत है। मान लीजिए कोई बच्चा अगर उसके पिता का बर्थडे है तो पिता के बर्थडे पे वो कुछ गिफ्ट लाना चाहता है तो पैसे कहां से लाएगा, वो पैसे पिताजी से ही लेता है, पिताजी से पैसे लाके पिताजी को ही कुछ गिफ्ट देता है तो पिताजी खुश हो जाते हैं, वो ये नहीं पूछते तो मेरे पैसे से लाया, अपने पैसे से लाना चाहिए, नहीं पिता प्रसन्न होते हैं। तो ठीक वैसे ही भगवान की दी हुई चीजों को ही हम अगर भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, और इस प्रकार जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो उनकी कृपा को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और हमारा भी शुद्धिकरण होता है। अभी भी ऐसी प्रथा है, मान लीजिए आपके लिए कोई हलवा का डिब्बा लेके आया, आपने उस हलवे को खाया, अभी रिटर्न वो डिब्बा देना है तो खाली डिब्बा नहीं देते हैं, उसमें कुछ प्रसाद भर के देते हैं, तो ठीक वैसे ही भगवान भी क्या देते हैं, हमें रिटर्न में अपनी कृपा देते हैं। इसका प्रूफ क्या है, कैसे हम मान लें कि भगवान ऐसा करते हैं, तो प्रूफ है कि जो व्यक्ति हमेशा केवल प्रसाद खाता है धीरे धीरे वो भक्ति में गंभीर होता चला जाता है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि भक्ति के साथ मुझे भोग जो है प्रदान करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अस्नामी प्रेतात्मना, इसलिए तुम मुझे वो अर्पण करो। तो भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति कह सकता है कि अर्जुन जैसे बोल रहा हूं, मान लो भगवान अगर मैं ये ना कर पाऊं क्योंकि मैं शुद्ध नहीं हूं तो क्या करना चाहिए मुझे, तो भगवान कहते हैं अगला श्लोक, भगवान बोलते हैं यत करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि तदासि यत, यह तपस्या सिकौनते या तत्कुरु समर्पणम। तुम जो भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, जो भी दान देते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। दिस इज निष्काम कर्म योग। पहले भक्ति बताया भगवान ने 26 नंबर श्लोक में और ये भी 27 नंबर श्लोक में निष्काम कर्म योग बताया। अगर वो तुम भक्ति योग नहीं कर सकते तो ये करो। इससे क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा और तुम वास्तविक भक्ति की तरफ अग्रसर हो जाओगे, धीरे धीरे तुम भक्त बन जाओगे। तो जब अपने आप को आप भक्ति में योग अपना योग करते हैं तो क्या होगा, तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। भक्ति के द्वारा कर्म बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रस्सी से बंधा हुआ है तो अगर उसको रस्सी से खोल दिया जाए तो कितना सुकून महसूस करता है। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसके सारे जन्मों के जितने भी पाप पुण्य कर्म बंधन है वो सब खत्म हो जाते हैं और जीवन खत्म होने के बाद वो भगवान के धाम सीधा जाता है, वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है जन्म मृत्यु से। मामुपेश से सी भगवान बोलते हैं, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो निष्काम कर्मी होगी इस प्रकार कर्म से छूट जाता है। ज्ञान योगी केवल मोक्ष प्राप्त करता है, लेकिन जो भक्त है वो तीनों प्राप्त करता है। वो कृष्ण को भी प्राप्त करता है, मोक्ष भी प्राप्त करता है और कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। यह भक्ति की विशेषता देखिए। जो कर्म योगी है उसके कर्म बंधन खत्म होते हैं केवल, जो ज्ञान योगी है उसको कर्म बंधन भी खत्म होते हैं और साथ साथ में उसको क्या होता है, मोक्ष भी प्राप्त होता है। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो उसके कर्म बंधन खत्म होते हैं, उसको मोक्ष भी प्राप्त होता है और साथ साथ में भगवान का प्रेम भी उसको प्राप्त होता है। यह है भक्ति योग की विशेषता। तो इस प्रकार भगवान ने अर्जुन से कहा कि देखो इस संसार में जितने भी जीव हैं वो जब मेरी इस प्रकार से भक्ति करते हैं तो मैं उनको खुद ज्ञान देता हूं, उस ज्ञान के द्वारा वो लोग मेरे पास वापस आते हैं। और अभी अर्जुन आगे पूछता है कि आप ये जो है आप मुझे ये बताइए क्या आप दूसरों से पक्षपात क्यों करते हो। भक्तों के लिए आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन ये बाकी लोगों से पक्षपात क्यों करते हो। भगवान ने कहा देखो केवल जीव ही नहीं बल्कि जो भी क्षमता जो भी गुण देवताओं के पास हैं वो सारे के सारे कहां से आ रहे हैं, वो मेरे से ही आ रहे हैं। जीवों के अंदर शक्ति भी मेरे से आ रही है और देवी देवताओं के अंदर शक्ति भी मेरे से आ रही है। तो जो ये बात समझ जाता है कि सारी वस्तुओं का स्रोत मैं हूं वो मेरे पास आता है, और जो मेरे पास नहीं आता वो देवी देवताओं के पास जाता है और वो वहां पे जाके संतुष्ट रहता है। जो देवी देवता उनको देते हैं वो उससे संतुष्ट रहता है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए दो दुकानें हैं, एक दुकान पे सेम लड्डू दिखने में एक 25 रुपए का मिल रहा है जो घी से बना हुआ है, और दूसरा आप दुकान पे 5 रुपए का मिल रहा है जो नकली तेल से बना हुआ है। तो अगर वो व्यक्ति जाके नकली तेल वाला लड्डू खाना चाहता है तो मैं क्या कर सकता हूं। जैसे हमारे इस्कॉन में हम बताते हैं भाई 4 नियमों का पालन करना है, 16 माला जप करना है, तो लोग डर जाते हैं, अरे बाप रे इतना टाइम कौन भक्ति करेगा, हाँ हमें तो बहुत सारे काम करने हैं, हम 4 नियमों का पालन नहीं कर सकते प्रभु जी, कभी कभी तो हम लोग सिगरेट वगैरह पी सकते हैं, ऐसा मान लो कुछ दोस्त वोस्त आ गए तो, हाँ कभी कभी प्याज लहसुन खा सकते हैं। हम जब उनको बोलते हैं नहीं कर सकते तो फिर वो क्या होते हैं, वो भाग जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं हम नहीं कर सकते। और दूसरी जगह जब उनको बोला जाता है कि हाँ आपको जो करना है करो, आप आके हमारे मंदिर में दीक्षा ले लो और इतना पैसा हमको दे दिया करो, बाकी आपको जो करना है करो, तो वो लोग उधर जाके जुड़ जाते हैं, वो बकरी खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, सब खाएंगे, और फिर क्या होगा, बार बार इस संसार में उनको आना पड़ेगा। लेकिन शुद्धता जहां पे है वहां पे वो आना ही नहीं चाहते, तो जब आना ही नहीं चाहते तो फिर मैं क्या कर सकता हूं। मैं तो समोहम सर्वभूतेषु, मैं तो सबके लिए सम हूं, लेकिन अभी कोई मुझे आने नहीं चाहता मेरे पास, तो मैं क्या करूं। तो भगवान कहते हैं कि जो लोग मुमुक्षु हैं, मुमुक्षु मतलब होता है जो लोग मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जो इस संसार से बाहर जाना चाहते हैं, वो किसी घोर रूप की उपासना नहीं करते हैं। घोर रूप मतलब जैसे भद्रकाली, खतरनाक रूप लगता है उनका, वो उनको रिस्पेक्ट देते हैं और उनसे ईर्ष्या भी नहीं करते, लेकिन अगर पूजा करने की बात आती है, भक्ति करने की बात आती है, तो श्री श्री राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, श्री श्री सीताराम की भक्ति करते हैं, लक्ष्मी नारायण की भक्ति करते हैं, जिससे कि उनके अंदर दैवीय गुण जो है वो बढ़े। तो अगर कोई व्यक्ति सच में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसको भगवद गीता सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। और फिर भगवान कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते मावानन्य भाग साधु रेव समन्तव्या सम्यक विवसितो हि सा। ये देवी देवता इस बात की गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्त है, वो गलत कार्य भी कर देता है लेकिन भक्ति में रत रहता है, तो मैं उसको उसका पतन नहीं होने देता हूँ, उसको मैं बचा लेता हूँ, क्योंकि वो राइट पथ पे है, सही दिशा में जा रहा है। हाँ, वो अभी क्या होगा, माफी मांग लेगा और फिर से सही से भक्ति करना शुरू कर देगा, तो उसको उसका पतन होने का चांस नहीं, मैं खुद उसको बचाता हूं। ये भगवान जो है हम लोगों को गारंटी देते हैं। वो बोलते हैं कि मैं उसको खुद वापस लेता हूं, लेके आता हूं और उसको माफ कर देता हूं। इसका मतलब देख समझिए, बहुत गुड़ बात यहां पे है, भगवान का हर भक्त के साथ पर्सनल रिलेशन है, भगवान हर भक्त के को पर्सनली जानते हैं। ये मेरा जप कर रहा है, इसने मेरा नाम लिया, ये जब गिर पड़ा था तो इसने मेरा नाम लिया था। हाँ, हर चीज भगवान जानते हैं पर्सनली। कोई कह सकता है अरे इतने सारे लोग हैं, भगवान थोड़ी सबकी केयर करते होंगे। नहीं, भगवान पर्सनली हमको जानते हैं, पर्सनली जानते हैं कि ये भगवद गीता की क्लास चल रही है और 24-25 लोग अभी क्लास में सुन रहे हैं, कौन कौन क्लास किस किस तरीके से सुन रहे हैं, सब उनको अच्छे से पता है। तो भगवान का हमारा रिलेशन कैसा है, बिल्कुल पर्सनल है, पर्सनल अटेंशन देते हैं भगवान। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति थे। भगवान 10वें अध्याय में भी बोलेंगे ये श्लोक कि जो इस तरीके से सतत युक्त है मेरी भक्ति में, उनको मैं खुद बुद्धि देता हूं। कौन सी बुद्धि, जिसके द्वारा वो मेरे पास वापस आ सकते हैं, ऐसी बुद्धि भगवान अर्पित करते हैं हम भक्तों को, दूसरों को नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान को इधर उधर खोजते रहते हैं, भगवान का गाइडेंस प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के भक्तों का गाइडेंस प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए मैं उनको दे देता हूं, क्योंकि वो लोग वही मांग रहे हैं। वो यही कहते हैं कि मुझे कृष्ण भक्ति चाहिए, मुझे संसार के सुख नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण की भक्ति चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति वही बात मांग रहा है तो मैं उसको प्रदान करता हूं। लेकिन जो डेमी गॉड्स के भक्त होते हैं, जो उपासक होते हैं, देवताओं के उपासक होते हैं, वो क्या मांगते हैं, मुझे ये सुख दे दो, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे जापान जाना है, मुझे यहां जाना है, वहां जाना है, ये खाना है, वो पीना है करके वो लोग उन चीजों को मांगते हैं, इसलिए उनको वो चीजें मिलती हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए मैं उनको खुद को अर्पित कर देता हूं। तो इस प्रकार भगवान अंतिम श्लोक, मनमना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस युक्त एवं आत्मानं मत परायणा बोलते हैं, और इस प्रकार से नाइन्थ चैप्टर जो है वो एंड होता है। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि हमें याचना करनी चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए। इस प्रकार भक्ति इतनी सुलभ है, किसी व्यक्ति को हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है। आप वापी में रहो, आप ऑस्ट्रेलिया में रहो, अमेरिका में रहो, दुबई में रहो, पाकिस्तान में रहो, वहां पे रह के भी भक्ति कर सकते हो। कोई कठोर तपस्या की जरूरत नहीं, जंगल जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग अभी मंदिर में रहते हैं तो सुबह से शाम तक इतनी बार हरे कृष्णा, हाँ सुबह उठे हरे कृष्णा, किसी को मिले हरे कृष्णा, हाँ कुछ जप करने जा रहे हैं कौन सा जप करेंगे हरे कृष्णा, खाना खाया हरे कृष्णा, हर चीज में हरे कृष्णा। किसी गेस्ट को रिसीव करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, हरे कृष्णा। कोई जा रहा है, किसको बोलते, क्या बोलते हैं, अच्छा प्रभु जी हरे कृष्णा, हर समय हरे कृष्णा। हाँ, तो जब ध्रुव महाराज वैकुंठ जाने वाले थे तो उसके पहले वो भगवान की भक्ति कर रहे थे, और वैकुंठ से उनके लिए विमान आया तो वैकुंठ जाने वाले हैं, अभी वैकुंठ के पार्षद जो आए हुए थे उनसे क्या बोलें, क्या उनको गिफ्ट दें, उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, भगवान का नाम ले लिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को जप किया बस। किसी को बुलाना है हरे कृष्णा, किसी को भेजना है हरे कृष्णा, किसी का बर्थडे है हरे कृष्णा, हर जगह हम भगवान का नाम लेते हैं, इस प्रकार से हम शुद्ध होते जाते हैं। तो हम जो भी कर रहे हैं उसमें भगवान का नाम लेते हैं तो वो कार्य भी शुद्ध हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। ऋषिकेणा ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना ही भक्ति कहलाती है। अभी जो हमारी इंद्रियां हैं वो कैसी हैं, दूषित हैं। अभी इंद्रियां कैसी हैं, दूषित, जैसे लोहा होता है। तो लेकिन अगर हम लोहे को आग में डाल देते हैं तो लोहा थोड़ी देर बाद कैसा, आग ही बन जाता है। तो वैसे ही अगर हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो हम भी, हमारी इंद्रियां भी कैसी हो जाएंगी, पवित्र हो जाएंगी। ठीक वही हुआ ध्रुव महाराज के साथ, ध्रुव महाराज ने भगवान की भक्ति किया 5.5 महीने, और उसके बाद भगवान जब प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज को समझ में नहीं है मैं बोलूं क्या। तो भगवान ने क्या किया, अपने शंख को ध्रुव महाराज के गाल पे लगाया। जैसे ही गाल पे उनके लगाया, सारा ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया। वो कभी किसी प्राइवेट स्कूल में गए नहीं थे, किसी गुरुकुल में भी नहीं गए थे, लेकिन वो बहुत सुंदर तरीके से भगवान की फिर प्रार्थनाएं करते हैं। यो अंतः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति धरा स्वधाम्ना। बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, कहते हैं कि आपके इस कृपा से मेरे पूरे शरीर में जो भी इंद्रियां हैं सब जो हैं वो कैसी हो गई हैं, एक्टिव हो गई हैं। आपकी कृपा से मैं बोल पा रहा हूं, आपकी कृपा से मैं सांस ले पा रहा हूं, ये सब आपकी कृपा है। सारी इंद्रियां जो है इलेक्ट्रिफाइड हो गई हैं आध्यात्मिकता से। पहले वो सो रही थी, अभी आपकी कृपा से वो आपका गुणगान कर रही हैं। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया। हाँ, अभी देखो मैं कितने सुंदर श्लोकों में आपका गुणगान कर रहा हूं, पर अभी मैं कर सकता हूं क्योंकि आपने मुझ पे कृपा की हुई है। तो इस प्रकार हमें क्या करना चाहिए, भगवान की शक्ति को भगवान के लिए ही यूज करना चाहिए। तो इस प्रकार 9th चैप्टर हम लोगों ने उसका रिकैप किया। अभी 10वां अध्याय, 10वां अध्याय आज के सत्र का सारांश, अध्याय 10। 42 श्लोक हैं इस अध्याय में। पहले 7 श्लोकों में भगवान बताते हैं कि किस तरीके से वो प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, और फिर बीच में 8 नंबर श्लोक से लेकर 11 नंबर श्लोक तक इन 4 श्लोकों को गीता का सार बोला जाता है। अभी आप कहेंगे प्रभु जी गीता का सार अभी पिछले अध्याय में आप 9th चैप्टर में बोल रहे थे वो गीता का सार है, अभी फिर से बोल रहे हो गीता का सार है। वो गीता का सार जो 9th चैप्टर में दिया गया है उसी को डिटेल में यहां पे बताया गया है, हम लोग जानेंगे। और 12 नंबर श्लोक से लेके 42 नंबर श्लोक तक भगवान किस तरीके से सर्वत्र व्याप्त हैं, अपनी विभूतियों को बताएंगे, वो हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से ये 3 जो है टाइटल्स में यहाँ पे 10th चैप्टर डिवाइडेड है। तो अभी हम लोग पहला पार्ट में चलते हैं। 1 नंबर श्लोक से लेके 7 नंबर श्लोक तक भगवान जो है वो समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों के स्रोत हैं। नमे विदुः सुरगणा ही विष्णु, मुझे एक विद्वान लोग बहुत, सारे देवता ये सब कोई भी मुझे जान नहीं सकता, इवन ब्रह्मा जी भी मुझे नहीं जान सकते, भगवान कहते हैं। चलिए अध्याय 9 और 10 के बीच में संबंध। 9वें अध्याय में भगवान ने कृष्ण ने मन को उन पर केंद्रित करने के लिए निर्देशित किया था। भगवान ने आखिरी श्लोक में बोला था मन मना भव मत भक्त, अपने मन को मुझ में लगाओ। अभी 10वें भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है जिन पर एक भक्त अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है, और इस जगत की सुंदर बलवान और वैभवशाली वस्तुओं को देखकर वह किस प्रकार भगवान का स्मरण कर सकता है बताया गया है। 9वें अध्याय का निष्कर्ष है कि व्यक्ति को शुद्ध भक्त बन जाना चाहिए। 10वें अध्याय में बताया गया है कि कृष्ण के ऐश्वर्य को जानकर हम अपनी भक्ति में किस तरीके से वृद्धि कर सकते हैं। भगवान 10 नंबर श्लोक में खुद से ही बोलना शुरू करते हैं, भूये वो महाबाहो श्रणु में परमं वचः यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। अब मैं तुमको तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान बताऊंगा जो अभी तक मेरे बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। वो क्या है, नमे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षया अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसा। कोई देवता न तो मेरी उत्पत्ति को जानते हैं न मेरे ऐश्वर्य को जानते हैं, मैं कैसे प्रकट हुआ हूं कुछ नहीं पता उनको, मेरा ऐश्वर्य क्या है उनको नहीं पता, और ना ही महर्षि लोग भी जानते हैं, जो ऋषि लोग हैं वो भी नहीं जानते। क्यों क्यों नहीं जानते, क्योंकि उनका सोर्स भी मैं ही हूं। वो लोग कैसे प्रकट हुए, मैंने प्रकट किया उन लोगों को, तो वो कैसे जान सकते मेरे को। सोर्स जो है वो अपने पार्ट को जान सकता है, अंश को जान सकता है, लेकिन अंश सोर्स को कैसे जान सकता है। इसलिए कोई देवता कोई महर्षि मुझे समझ नहीं सकते। तो इस प्रकार से हम लोग एक लीला के बारे में डिस्कशन करते हैं, ब्रह्म विमोहन लीला। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ में एक यमुना नदी के किनारे प्रेम पूर्वक जो है प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, भोग ग्रहण कर रहे थे, और उसी समय क्या हुआ, ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान का एक सखा, उसने एक लड्डू लिया, लड्डू को अपने खाया थोड़ा सा, उसको टेस्टी लगा तो उसने भगवान को खिलाया, बोला भगवान को ये कृष्ण ये देखो ये बहुत टेस्टी है, और कृष्ण ने उस लड्डू को खा लिया। ब्रह्मा जी का तो चार सिर था, चारों सिर चकरा गया, अरे क्या हो रहा है। थोड़ी देर में क्या हुआ, मधुमंगल था, मधुमंगल वो घर से छाछ लेके आया था, गरीब घर से था, छाछ लेके आया था। छाछ भी बेचारे की बहुत खट्टी थी, तो खट्टी छाछ थी और मधुमंगल चुपचाप कोने में छाछ पी रहा था। भगवान ने देख लिया, भगवान ने गई मेरे को दिया नहीं तूने, तो बोला नहीं मैंने दूंगा, तो भगवान ने उसको दौड़ा लिया। तो दौड़ते दौड़ते मधुमंगल जो है छाछ को पूरा पीने लगा और अंतिम जो था, जो अंतिम में उसके मुंह में छाछ रह गई और भगवान ने क्या किया, उसके मुंह पे दोनों गालों पे ऐसा मुक्का मारा, उससे क्या हुआ, उसके मुंह से धार निकली और भगवान ने उस छाछ को पी लिया। इतना आदान प्रदान मधुर हो रहा है, ये देख के ब्रह्मा जी सोचने लगे, अरे बाप रे, ये तो मैंने तो सुना था ये कृष्ण भगवान है, लेकिन भगवान को तो भोग लगता है तो ब्राह्मण लोग लगाते हैं, बहुत शुद्धता से बनाते हैं, ये क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी चकरा गए, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनके जो ग्वाल बाल के जो बछड़े थे उन बछड़ों को चोरी कर लिया। तो जब बछड़े दिखाई नहीं दिए तो सारे ग्वाल बाल परेशान हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा तुम लोग परेशान मत हो, मैं खुद ढूंढ के आता हूं, और भगवान ढूंढने के लिए चले गए बछड़े किधर गए। अभी जैसे ही भगवान वहां से गए, ब्रह्मा जी ने क्या किया, इन सारे ग्वाल बालों को भी चुरा लिया। भगवान रिटर्न आए, देखे अरे बछड़े भी नहीं है, ग्वाल बाल भी कहां चले गए ऐसा करके। और ब्रह्मा जी थोड़ी देर बाद उनको एहसास हुआ कि मैंने गलती कर दी है, तो वो अपने लोक चले गए थे और वहां से वापस आए। ब्रह्मा जी का आपने समय तो सुना ही, 100 साल उनका कितना बड़ा होता है। ब्रह्मा जी जब से वहां से गए, एक क्षण में वापस आए, तब तक यहां पर 1 साल बीत चुका था पृथ्वी पे। तो भगवान ने क्या किया था, भगवान ने अपना ही विस्तार कर लिया। सारे ग्वाल बाल जिस वेशभूषा को पहने थे, जो उनका मन था, जैसा उनका भाव था, जिस तरीके से चलते थे, जो भी एक्टिविटी करते थे, एज इट इज भगवान कृष्ण ने अपने को विस्तार कर लिया। सेम रूप में भगवान ने विस्तार किया अपने को बछड़ों के रूप में भी। अब ब्रह्मा जी ने आके जब यहां देखा, ये तो सारे ग्वाल बाल बैठे हुए हैं, बछड़े भी सारे यहीं पे हैं। तो ब्रह्मा जी चेक करने के लिए गए, मैं तो उनको सुला के आया हूं, कहीं पे छुपा के आया हूं, उधर देख रहे हैं तो उधर भी सो रहे हैं सारे बछड़े, सारे ग्वाल बाल। आप ब्रह्मा जी तुरंत अपनी गलती को मानते हुए तुरंत भगवान की शरण को ग्रहण करते हैं, बोलते हैं भगवान मैं आपको समझ नहीं पाया, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ये ब्रह्म विमोहन लीला देख रहे हैं, ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सकते। अब ब्रह्मा जी तो ऐसे देखा जाए हम सबकी सृष्टा है, हम सबको उत्पन्न करने वाले हैं, लेकिन उनको उत्पन्न करने वाला कौन है, वो भगवान है। तो इस तरीके से वो भगवान को मोह में डालने चाहते थे, वो खुद ही मोहित हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं हे भगवान मैं तो एक जुगनू के समान हूं और आप एक सूर्य के समान हैं। अज्ञानी लोगों को लग सकता है कि जुगनू ही प्रकाश दे रहा है, जुगनू बोल भी सकता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, लेकिन जैसे सूर्य निकलता है जुगनू को उसकी औकात पता चल जाती है। ठीक वही स्थिति मेरे सामने है। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, जब भगवान कृष्ण ने देवताओं की पूजा, खास करके इंद्र की पूजा करने को मना किया सबसे, और सारे जो वृंदावन वासी थे उन्होंने गोवर्धन की पूजा किया, तो इंद्र बहुत कुपित हो गया और इंद्र ने क्या किया, वृंदावन पे बहुत बारिश की, बहुत बारिश किया, और भगवान ने क्या किया, गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक धारण करके रखा और सारे लोगों को, सारी गऊओं को, सबको उस गोवर्धन पर्वत के नीचे उन्होंने शरण दिया। इस प्रकार से 7 दिनों तक इंद्र ने जब बारिश कर लिया, 7 दिनों बाद उसको बुद्धि आई, तब उसने क्या किया, वो भगवान कृष्ण के शरण में आया माता सुरभि को लेके, और भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित करी उसने। उसने बोला मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया आप मुझे माफ कर दीजिए। इंद्र ने यहां तक तो अपना रिजाइन भी दे दिया, बोला कि मैं अभी स्वर्ग का राजा नहीं रहना चाहता हूं, आप कृपया किसी और को राजा बना दीजिए, चाहे तो आप ही राजा बन जाइए। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, आप पोस्ट मत छोड़ो, आप अहंकार छोड़ दो, जो अहंकार आपके अंदर है कि मैं इंद्र हूं, मैं स्वर्ग का राजा हूं, आप उस अहंकार को छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार भगवान को देवी देवता भी समझ नहीं पाते हैं। कृष्ण को जानने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान तीसरे नंबर के श्लोक में जाते हैं, यो मामज्वनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़म चमर असम्मूढ़म समर्थेषु सर्व पापाय प्रमुच्यते। सारे पापों से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अभी भगवान 4 नंबर श्लोक से लेकर 6 नंबर श्लोक तक भगवान बताते हैं कि किस प्रकार वो जो है सारे गुणों और व्यक्तियों के स्रोत हैं। अगर हम इन चीजों को दृढ़ता से, गंभीरता से ग्रहण करेंगे तो हम भी सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं। अभी हमारी बुद्धि कहां से आ रही है, कृष्ण से आ रही है, तो हम कृष्ण को कैसे अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं?
नहीं।
तो क्या करना चाहिए? भक्त जो है भगवान का, वो भगवान से बुद्धि मांगता है कि आप मुझे बुद्धि दीजिए जिसके द्वारा मैं आपको समझ सकूं। तो भगवान जो है वो सारे ऋषियों के, सारे गुणों के, सारे व्यक्तियों के, सबके स्रोत हैं। अभी मान लीजिए हम लोग अगर गोलोक वृंदावन देखना चाहें तो टेलीस्कोप लगा के देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, क्योंकि भगवान का जो धाम है, दिव्य है, आध्यात्मिक है, वो हमारे अपने प्रयासों के द्वारा नहीं पाया जा सकता। कई लोग वहां गए हैं, कैसे? अपने इंटेलिजेंस के द्वारा नहीं, भगवान की कृपा के द्वारा जा सकते हैं। तो कई लोग जो यहां पे प्रयास करते रहते हैं वो उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो अगर हम गुरु के अंडर में रहते हुए भगवान की भक्ति करते हैं तो हम भगवान के जो ज्ञान अर्जित करते हैं साधु शास्त्रों के द्वारा, तो भगवान की कृपा हमको प्राप्त होती है। जो भगवान के योग और शक्ति से आश्वस्त होते हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं और वो भगवान को जान सकते हैं। तो भगवान कहते हैं, बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख दुख जन्म मृत्यु भय अभय, अहिंसा समता, तुष्टि तप दान यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न हैं, ये सब मुझसे आ रहा है। छठे श्लोक में बोलते हैं, सप्तर्षि गण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि, सारे मनु, सारे मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते रहते हैं। ये जितने भी गुण हमको दिखाई दे रहे हैं ये सारे भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। ये सब तो ऐसी गण है, वो भगवान से उत्पन्न होते हैं। उनके पूर्व जो चार अन्य महर्षि हुए वो भी भगवान से उत्पन्न है, सारे मनु भगवान से उत्पन्न है, और सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो ये भगवान 4-6 नंबर श्लोक में बोलते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं कि एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्त्वतः स्व विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया। बोलते हैं कि जो व्यक्ति इस ऐश्वर्य तथा योग से आश्वस्त होता है वो मेरी भक्ति करने लगता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो अगर हम भगवान की शक्तियां जो हैं उनकी सराहना करते हैं, हाँ देखो भगवान की कितनी शक्ति है कि भगवान बारिश को नियंत्रित करते हैं, बारिश समय से आती है, भगवान सूर्य को नियंत्रित करते हैं, हमेशा वो बिना अलार्म के जग जाता है और रोज सुबह निकलता है, ऐसे हर चीज को अगर हम उनकी शक्तियों की सराहना करेंगे तो हम शरणागति प्राप्त कर लेंगे और उनकी भक्ति करने लगेंगे, इसमें संदेह नहीं है। अब भगवान आगे चार श्लोक जो है महत्वपूर्ण चार श्लोकों को बोलते हैं। इन चारों श्लोकों को सबको याद कर लेना चाहिए, इन्हें चतुश्लोकी भी कहा जाता है। ये परम भक्तों की भक्ति का वर्णन करते हैं। मैंने बताया था ना 9th चैप्टर में जिन भक्तों के बारे में बताया गया है कि जो मेरा भक्त होता है, मन मना भाव मत भक्तो, वो मन को अर्पित कर देता है, मेरी भक्ति करता है, वो क्या करते हैं वो यहां पे बताया गया है। तो उस भक्ति को उत्पन्न और पोषण करने वाले भगवान के स्वभाव को भी बताया गया है। तो ये सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है, एसेंस ऑफ गीता, गीता का सार। तो ये चार श्लोकों में कृष्ण के 8 नंबर श्लोक में भगवान के ऐश्वर्य और उनके ऐश्वर्य को समझने के बाद व्यक्ति के शुद्ध बनने के बारे में वर्णन है, कैसे वो शुद्ध बनता है। 9th श्लोक में शुद्ध भक्त कैसे कृष्ण की उपासना करते हैं वो बताया गया है, और 10 और 11 नंबर श्लोक में भगवान की भक्ति के प्रति, भक्तों की भक्ति जो भगवान के प्रति होती है, भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान कैसे करते हैं, उसको बताया गया है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ये चारों श्लोक मेरे साथ में दोहराएं, मेरे पीछे पीछे दोहराइए आप लोग अगर मेरे साथ हैं तो। अहम सर्वस्य प्रभवो, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते माम, बुधा भाव समन्विता, मच्चिता मद्गत प्राण, बोधयन्ता परस्परम्, कथयन्तश्च माम नित्यम्, तुष्यन्ति च रमन्ति च, तेषां सततयुक्तानां, भजतां प्रीतिपूर्वकम्, ददामि बुद्धि योगं तम्। येन माम उपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तो इस प्रकार भगवान इन चार श्लोकों को बताते हैं, दसवें अध्याय के आठ नंबर, नौ नंबर, दस और ग्यारह। दस पॉइंट आठ में सारांश दिया गया है और भगवान इसको विस्तार से बाकी तीन श्लोकों में समझाते हैं। क्या है? बोलते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सबका प्रभु हूं, सारे जगतों का कारण हूं, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत होती है। जो बुद्धिमान ये जानते हैं वो मेरी प्रेम भक्ति में लग जाते हैं और हृदय से मेरी पूजा करने में तत्पर हो जाते हैं। तो यहां पे बताया गया है कि जो भगवान को जान लेता है वो भगवान की भक्ति करने में लग जाता है। अब देखिए यहां पे तीन चीजें वास्तव में बताई जा रही हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ये तीन शब्द याद रखिए, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, तीनों में समझाने का प्रयास करता हूं। संबंध मतलब जब दो लोग साथ में आते हैं तो उनका संबंध क्या होता है, वो संबंध बनाते, संबंध करते हुए कुछ पैसा लगाते हैं किसी जगह पे, मान लीजिए कुछ इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो क्या है, अभिधेय। और जब उनको प्रॉफिट मिलता है वो है प्रयोजन। जैसे कोई बच्चा स्कूल ज्वाइन करता है, एडमिशन लेता है, तो संबंध, फिर वो पढ़ाई करता है, अभिधेय, और वहां से डिग्री प्राप्त करता है, वो प्रयोजन। हम लोग मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उसको अपना डिटेल देते हैं यानी कि संबंध, फिर वो हमें दवा देता है, हमारी बॉडी चेक करता है, मेडिसिन इत्यादि जो सारी चीजें देता है, वो अभिधेय। और जब हम हेल्दी हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, तो क्या है, प्रयोजन। तो ये संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, यहां पे भी यही तीन चीजें हैं और यही तीन चीजें जो है वेदों में बताई गई हैं। संबंध क्या है? संबंध है कि भगवान कृष्ण हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। जैसे कि भगवान राम के दास हनुमान जी हैं, ऐसे हम भगवान के दास हैं। अभिधेय क्या है? अभिधेय है नवधा भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये अभिधेय है। सोलह माला जप करना, चार नियमों का पालन करना। आपको पता है 64 नियम दिए गए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, जैसे भागवत शरण ग्रहण करना, भागवत श्रवण करना, चरणामृत पान करना, भगवान को दंडवत प्रणाम करना, भगवान की आरती लेना, भगवान का दर्शन करना, इत्यादि इत्यादि 64 नियम बताए गए हैं, 64। जब कोई व्यक्ति किसी मंदिर में एंट्री करता है तो भगवान का दर्शन करने की जो आतुरता उसके अंदर होती है कि भगवान का दर्शन हो, वो आतुरता जो है उसको अगले जन्म में माँ के गर्भ में आने नहीं देती है। ये भगवान का दर्शन करने का लाभ है। आतुरता के साथ जो दर्शन करता है उसको नेक्स्ट जीवन में मां के गर्भ में नहीं जाना पड़ता, बल्कि कहां जाएगा, वो भगवान के धाम चला जाता है। अगर कोई भगवान के प्रदक्षिणा करता है, परिक्रमा करता है, तो जन्म मृत्यु से छूट जाता है। अगर कोई चरणामृत ग्रहण करता है तो तुरंत शुद्ध हो जाता है। तुलसी महारानी को पानी देने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या से भी बच जाता है, ब्रह्म हत्या का पाप जो है खत्म हो जाता है। तो हमारा अभिधेय क्या है? हमारा अभिधेय यही एक्टिविटीज करना है, प्रेम पूर्वक यही ये प्रक्रियाओं को अपनाना है, जिसके द्वारा हमारे हृदय में भक्ति जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और हमारा अभिधेय क्या है? वैधि साधना भक्ति। वैधि साधना भक्ति जो साधना बताई गई है, 16 नियम, 16 माला जप करना, ये हमें जप करना चाहिए। देखिए पहले साधना भक्ति रहती है यानी साधन करना पड़ता है, फिर भगवान से राग हो जाता है तो रागानुगा भक्ति होती है, फिर भाव भक्ति और अंत में प्रेम भक्ति होती है। जैसे छोटा बच्चा होता है, सबसे पहले वो रेंगता है, धीरे धीरे वो किसी चीज को पकड़ के खड़ा होने का प्रयास करता है, फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है, फिर लास्ट में वो बिल्कुल परिपक्व हो जाता है चलने फिरने में। तो ऐसे ही भक्ति में भी अभ्यास जो है वो धीरे धीरे हमें वैधि साधना भक्ति से प्रेम भक्ति तक लेके जाता है, जब हमें कृष्ण से स्वाभाविक प्रेम होता है। तो जिस प्रकार जब भी कुछ कोयला जल रहा होता है धीरे धीरे उसके ऊपर क्या होता है, राख जम जाती है और कोयला जो है दिखाई नहीं देता है। हाँ, लेकिन जब हम फूंक मारते हैं तो पुनः धुआं स्टार्ट हो जाता है और कोयला फिर से दिखने लगता है। वैसे ही हमारी भक्ति जो है अभी अनर्थों के कारण ढकी हुई है, अभी सुप्त अवस्था में है, लेकिन जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, चार नियमों का पालन करते हैं, किसी भी पाप कर्म से दूर रहते हैं, तो धीरे 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 वो आवरण निकल जाता है और तीव्र भक्ति जो है हमारे हृदय में जागृत हो जाती है। इसको अभिधेय कहते हैं। अभी प्रश्न है प्रयोजन क्या है, तो प्रयोजन है कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। यही तीन चीजें जो हैं वो यहां पे बताई गई हैं 8, 9, 10, 11 नंबर के श्लोक में। 8 नंबर श्लोक जो है वो सारांश है, मुझे जानने वाले ज्ञान प्राप्त करके मेरी भक्ति में तत्पर हो जाते हैं। जो इस बात को जान लेते हैं वो मेरा भजन करना शुरू कर देते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है वो अपनी माँ को सब कुछ मान लेता है, ऐसे ही हम लोगों को भगवान के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भगवान के प्रति कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उनका शेल्टर जो है ग्रहण करना चाहिए। मच्चिता मद्गत प्राणा, अगर आपने पहले श्लोक को ग्रहण कर लिया तो क्या होगा, आप इस श्लोक के बारे में समझ पाओगे। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंतः परस्परम, वो किस तरीके से समर्पित होते हैं मेरे प्रति। कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति चारमन्ति चा, सा मेरे जो शुद्ध भक्त हैं वो उनके विचार मुझ में वास करते हैं, पूरा जीवन उनका मेरी सेवा में लगा हुआ रहता है और वो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं, मेरे विषय में बातें करते हैं, परम संतोष का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। वो जान जाते हैं कि कृष्ण जो हैं वो सारे जो अवतार हैं, वराह अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, इन सब के स्रोत हैं और वो इनकी कथाओं को सुनते रहते हैं। वो जानते हैं कि सारे ब्रह्मांडों का सोर्स भी भगवान है, तीनों विष्णु का स्रोत भी भगवान है। इस प्रकार उनको दृढ़ विश्वास हो जाता है और वो भक्त जो है भक्तों का संग करते हैं जो कि भगवान की कथाएं करते हैं। इस प्रकार ईश्वर चर्चा शुरू हो जाती है। पहले हम लोग नॉवेल पढ़ा करते थे, टीवी देखा करते थे, अभी अभी क्या हो रहा है, शास्त्र पढ़ रहे हैं। शास्त्र पढ़ के जो है हम अपने आप को शुद्ध बना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सुनने का प्रयास करते हैं, भगवान के प्रसाद को ग्रहण करते हैं, भक्तों का संग करते हैं और साथ साथ में भगवान के नामों का जप करते हैं। तो एक्चुअली हमारी लाइफ ही चेंज हो गई वास्तव में अगर देखें तो। एक पहले का जीवन था, एक अभी का जीवन है। पहले हम मूवी के जो हीरो होते हैं उनसे इंस्पायर होते थे, आमिर खान को देख के मैं बड़ा इंस्पायर होता था, अभी पता चलो उसने दूसरी बीवी को तलाक दे दिया। क्या वो उनसे हम किस तरीके, क्या है उनके अंदर खूबियां, वो एक नंबर के है, वो लोग जो है लुच्चे लोग हैं, ये फिल्म स्टार क्रिकेटर वगैरह जो भी हैं, इनको हम कैसे हीरो बना सकते हैं, हमारे रियल हीरो तो हमारे भगवान हैं, ये हमारे वास्तविक हीरो हैं, तो हमें इनको हीरो बनाना चाहिए। क्या इनका, इनके बारे में क्या है, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा, भगवान आदि हैं, भगवान सबसे पुराने हैं, पुरुष हैं और नव यौवन है, हमेशा युवा रहते हैं। जब ये कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ उस समय भगवान की एज 125 साल थी। तो इस प्रकार जब हम भगवान के बारे में इन कथाओं को सुनते हैं तो हम कृष्ण के बारे में और ज्ञान प्राप्त करते हैं। हाँ, हम जान पाते हैं कि कृष्ण सूर्य के समान है और ये जो सो कॉल्ड हीरोज हैं ये जुगनू भी नहीं है। तो इस प्रकार भक्त जो है सब आपस में बातचीत करते हैं और भगवान को, भगवान के प्रति जो है वो और लगन को डेवलप करते हैं। ये देखिए सर्ग गोस्वामी ये हमेशा भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम, ये देखिए भगवान के भक्त जो है कथाएं सुन रहे हैं भगवान की। तुष्यंती चारमंती चा, फिर भगवान कहते हैं दसवें श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्ति ते, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में लग जाते हैं उनको मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिससे ये नमाम उपयान्ति ते, जो जो जिससे वो मेरे पास तक आ सकते हैं। बताइए भगवान खुद ही अपना ज्ञान देते हैं, किसके लिए, किसको देते हैं, जो सतत रूप से भगवान के सेवा में लगते हैं उनको। हाँ, तो कोई हो सकता है कोई ऐसा शिष्य हो, जो बहुत सिंसियर हो अपने गुरु के प्रति, लेकिन वो अनपढ़ हो, किताबें नहीं पढ़ सकता है। हाँ, वो तो भगवान कहते हैं मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूं, ददामि बुद्धि योगम तम, जैसे कि उन्होंने ध्रुव महाराज को प्रदान किया। ध्रुव महाराज 5 साल के बालक थे, उनको कुछ नहीं आता, किसी गुरुकुल में नहीं गए थे, और भगवान ने अपने शंख को जो है उनके हृदय उनके गाल पे लगाया और उनको पूर्ण ज्ञान जो है आ गया। तुरंत वो भगवान की बहुत सुंदर श्लोकों में प्रार्थना करने लगे। तो ये ज्ञान जो है भगवान उनको देते हैं, कैसे देते हैं वो अगले श्लोक में बताया गया। तेसामेवानुकम पार्थम अहम अज्ञान जम तमहा नासियाम्य आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य जो अंधकार उनके हृदय में है उसको दूर कर देता हूं। नास्याम्यात्म भावस्तो, अज्ञानता उसके हृदय से डिलीट मार देता हूं और ज्ञान का दीपक जो है वहां पे जला देता हूं। एक बार भगवान चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया गए तो वहां पे एक ब्राह्मण मिला। वो ब्राह्मण जो था उसको पढ़ना नहीं आता था, फिर भी उसके गुरु ने आदेश दिया था उसको कि तुम भगवद गीता पढ़ो, तो भगवद गीता लेके वो पढ़ता रहता था। उसको पढ़ना आता नहीं था इसलिए शब्दों को गलत बोलता था, और जो अन्य ब्राह्मण थे वो उस पे हंसा करते थे। चैतन्य महाप्रभु उससे मिले, चैतन्य महाप्रभु ने उससे पूछा, बोला कि तुम जब तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो क्यों पढ़ते हो? तो उसने बोला मेरे गुरु की आज्ञा है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। वो पढ़ रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आंसू तुम्हारी आंखों से क्यों गिर रहे हैं? तो उसने बोला जब मैं भगवान कृष्ण का ये पिक्चर देखता हूं जिसमें वो अर्जुन के रथ को हांक रहे हैं तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगते कि भगवान कितने दयालु हैं अपने भक्त के लिए, वो क्या नहीं करते अपने भक्त के लिए। वो फोर्थ क्लास काम कर रहे हैं, वो फोर्थ क्लास एम्प्लॉय बनकर ड्राइविंग का काम कर रहे हैं। तो ये भगवान की जो जो उनका महानता है उस महानता को देख के मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को गले से लगा लिया, बोला तुम ही वास्तव में भगवद गीता को समझ सके हो, और कोई भगवद गीता को समझ नहीं पाया। गीता रहस्य क्या है? यही है गीता का रहस्य कि कृष्ण जो है हमारे बहुत पास हैं, इतना पास और कोई भी नहीं है। हमारे मामा, हमारे नाना, हमारे पापा, हमारे दादा, हमारे कोई भी नहीं, फूफा बुआ कोई नहीं, कृष्ण। ये है कृष्ण की स्थिति। जब हम शमशान घाट जाएंगे तो अकेले जाने वाले हैं, कोई हमें बचा नहीं सकता, लेकिन भगवान उसके बाद भी हमारी गारंटी लेंगे अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो। वो हमारे फ्रेंड है, हमारे मित्र है, हमारे ईश्वर है, वो सुहृद है हमारा, सबसे ज्यादा भला चाहने वाले हैं। तो जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने किया वैसा ही भगवान के साथ हमें संबंध डेवलप करना चाहिए। देखिए चैंटिंग करने से पहले उसके हृदय में अनर्थ थे, अभी ये ज्ञान के दीपक जलने लगा और भगवान स्वयं उसके हृदय में आ गए। तो इस प्रकार भगवान जो है इन 4 श्लोकों को अर्जुन को बताते हैं। तो इस प्रकार जब ही ध्रुव महाराज भगवान के दर्शन करने की इच्छा थी तो ध्रुव महाराज को इसी प्रकार भगवान ने दर्शन दिया। तो जब हम हरि नाम लेंगे, अपना चित्त शुद्धि होगा, तो हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे के श्लोकों को पढ़ते हैं। 12वें नंबर श्लोक में अर्जुन भगवान की सर्वोच्चता की पुष्टि करता है। अर्जुन उनको स्वीकार करता है और बोलता है कि मैं आपकी विभूतियों के बारे में सुनना चाहता हूं। अर्जुन वाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव अजम विभुम आहुस्तामृषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि मे। आप परम भगवान है, परम धाम है, परम पवित्र है, परम सत्य है, आप नित्य है, दिव्य है, आदि पुरुष है, अजन्मा है, महानतम है, और अकेला मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ऐसा नारद असित देवल इत्यादि व्यास इत्यादि जो ऋषि हैं वो भी इसकी पुष्टि करते हैं, और तो और अभी आपने भी मुझसे ये बात बोल दी है। अभी बिल्कुल क्लियर हो गया है ये। अगले श्लोक में अर्जुन कहता है 14वें नंबर श्लोक में सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशवा नहिते भगवान व्यक्तिम विदुर देवा न दानवा। आपने जो कुछ भी कहा है मैं उसको पूर्ण मानता हूं। आपको देवता ना असुरगण समझ सकते हैं। फिर कौन समझ सकता है? केवल आप ही अपने आप को समझ सकते हो। स्वयमेव आत्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमा भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। आप सबके उद्गम हो, समस्त प्राणियों के स्वामी हो, देवताओं के भी देव हो, ब्रह्मांड के प्रभु हो, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को जानने वाले हो। अर्जुन रिक्वेस्ट करता है 16 नंबर और 17 नंबर श्लोक में, वक्तुर्महसि शेषेणा दिव्या हि आत्म विभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोका निमास्त्वं व्याप्रतिष्ठसि। कृपया अपने देवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। कथम विद्यामहं योगेस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन् मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जा सकता है? विस्तीर्णात्मनो योगम विभूतिम चा जनार्दना भूयः कथया तृप्तिर्हि श्रण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन कीजिए, मैं आपके विषय में सुनकर कभी भी तृप्त नहीं होता हूं। ये बहुत विशेष बात है कि भगवान के बारे में सुन सुन के कोई व्यक्ति उबता नहीं है कभी भी। क्यों? क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं और टेस्ट लेना चाहता हूं। भगवान की जो वाणी है या भगवान के बारे में जो बोला जाता है उसका आस्वादन हम लोग कहां से करते हैं? कानों कान रूपी पात्र से करते हैं, और कान जो है वो कभी भी भरते नहीं है। कान जैसे हम लोग अगर कुछ मुख से ग्रहण करते हैं तो पेट भर जाता है, फिर इच्छा नहीं रह जाती, लेकिन कान जो है हम कंटिन्यू भगवान के बारे में सुन सकते हैं। तो इस तरीके से अर्जुन ने भगवान से कहा, मैं आप पे विश्वास करता हूं और मैं जानता हूं कि देवता भी आपको नहीं जान सकते, वो गलती करते हैं, केवल आप ही आपको जान सकते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि एक नॉर्मल पर्सन, जो जनरल पर्सन है, वो आपको कैसे जाने? कृपया आप अपने ऐश्वर्य के बारे में बताइए। तो भगवान कहते हैं, देखो, हंत ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतया प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। मेरा जो ऐश्वर्य है वो अनलिमिटेड है, अनंत है, मैं तुमको सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हाँ कुछ चीजें मैं तुमको बता सकता हूं। अब भगवान आगे जो है बताना शुरू करते हैं। 20 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, मैं परमात्मा हूं, अहम आत्मा गुणा केश सर्वभूतास स्थिता अहम आदिष्ट मध्यम च भूतानामंत एव च। मैं परमात्मा हूं, समस्त जीवों के हृदय में स्थित हूं, मैं समस्त जीवों का आदि हूं, मध्य हूं, अंत हूं। अब एक चीज यहां पर समझ लीजिए, भगवान ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन जानना चाहता है कि कैसे इस संसार में रहते हुए एक नॉर्मल जनरल पर्सन वो कैसे भगवान को देख सकता है। तो भगवान अपने ऐश्वर्य को इसलिए अर्जुन को बताएंगे किस तरीके से भगवान का इस संसार में ध्यान किया जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है मतलब जो लीडर्स हैं किसी भी चीज के, हर कैटेगरी में उस कैटेगरी का जो बेस्ट पर्सन है जिसको कोई और पकड़ नहीं सकता, भगवान कहते हैं वो मेरी विभूति है, वो मेरा विस्तार है, मेरा ऐश्वर्य है। वो केवल लीडर ही नहीं, सारी शक्ति भगवान के पास से ही आती है, मतलब वो हर जगह अपने को एक्सपेंड करते हैं परमात्मा के रूप में और वो हृदय से शक्ति प्रदान करते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं तुमको कितना बताऊं, चलो इतना तो सुनो। ये भगवान 19 नंबर श्लोक से लेके 42 नंबर श्लोक में बताते हैं। भगवान कहते हैं, आदित्यों में यानी कि जो देवता हैं उनमें मैं विष्णु हूं, प्रकाश जो भी उत्पन्न करने वाले हैं उनमें मैं सूर्य हूं, जितने भी मरुत हैं उनमें मैं मरीचि हूं, सारे नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं, वेदों में मैं सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, समस्त जीवों में जीवन शक्ति हूं, सारे रुद्रों में मैं शंकर हूं, यक्षों और राक्षसों में मैं कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं, पर्वतों में मेरु पर्वत हूं, पुरोहितों में बृहस्पति, सेना नायकों में कार्तिकेय, जलाशय, जलाशय बहुत सारे होते हैं, नदी भी जलाशय है, सरोवर भी जलाशय है, लेकिन मैं क्या हूं? समुद्र हूं। महर्षियों में मैं भृगु हूं, वाणियों में मैं ओमकार हूं, यज्ञों में मैं नाम जप हूं। सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा जप है? यज्ञ है नाम यज्ञ, नाम जप यज्ञ। वृक्षों में मैं असत वृक्ष हूं, देवर्षियों में मैं नारद हूं, गंधर्वों में चित्रथ हूं, सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि, घोड़ों में उच्च श्रवा, हाथियों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, हथियारों में वज्र, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में कामदेव, सर्पों में वासुकी, अनेक फनों वाले नागों में अनंत, जलचरों में वरुण देव, पितरों में अर्यमा, नियमों के निर्वाहकों में यम, दैत्यों में प्रहलाद, दमन करने वालों में काल, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुण, पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में सार्क मछली मकर, नदियों में गंगा, सृष्टियों में आदि मध्य और अंत, विद्याओं में अध्यात्म विद्या, तर्क शास्त्रियों में निर्णायक सत्य, अक्षरों में आकार, अक्षर जितने भी हैं का खा गा घा, ये बिना आ के सब अपूर्ण हैं, तो भगवान आ हैं जो सबको पूर्ण करते हैं। समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ, विध्वंसकों में मैं काल हूँ, सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ, मृत्यु में मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, भविष्य में होने वाली चीजों में मैं जन्म हूँ, स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ, सामवेद के गीतों में बृहत साम हूँ, छंदों में गायत्री हूँ, महीनों में मार्ग शीर्ष हूँ, ऋतुओं में वसंत हूँ, छलियों में जुआ हूँ, तेजस्वियों में तेज हूँ, विजयी पुरुषों में विजय हूँ, प्रयास करने वालों में साहस हूँ, बलवानों में बल हूँ, वृष्णिवंशी जो भी यदुवंशी हैं उनमें मैं वासुदेव हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, मुनियों में मैं व्यास हूँ, अराजकता को दमन करने वाले साधनों में मैं दंड हूँ, विजय के आकांक्षियों में मैं नीति हूँ, रहस्यों में मैं मौन हूँ। अगर कोई व्यक्ति मौन रहेगा तो पता ही नहीं चल सकता उसका रहस्य, भगवान बोलते वो मैं हूँ, बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ और इस सृष्टि का बीज मैं ही हूँ। तो इस प्रकार भगवान बता रहे हैं, आप ये मैं सब पढ़ दिया एक साथ, आप इस इन पिक्चर्स को देख सकते हैं, सामवेद, इंद्र, मन और जीवन शक्ति,
divine golden mountain called Meru.
Meru Parvat.
Meru is shaped like an inverted cone, and it is the sporting place for the demigods. Around Meru are many supporting mountains called
Meru Parvat. Divine. Brahaspati, Kartikeya, Samudra, Bhrugu, Omkar, Pavitra Naam ka Jap, Himalaya, Aswatth Vrach, Kapil Muni, Narad Ji, उच्चैश्रवा, ऐरावत, राजा। तो इस प्रकार भगवान अपना इन सारी विभूतियों के बारे में बताते हैं, ये भगवान का ऐश्वर्य है। बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूं, समस्त साधनों में मैं दंड हूं। तो इस संसार में जब भी हम कुछ देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए कि ये भगवान की विभूति है। कभी हम कहते हैं कितना सुंदर लग रहा है, कितना मनोहर दृश्य है, हमें ये सब समझना चाहिए कि भगवान का ये ऐश्वर्य है और भगवान कितने महान हैं जिनके कारण ये दृश्य हमारे सामने उपस्थित है। कभी हम किसी का बल देखते हैं कितना बलशाली है, कभी हम किसी को देखते हैं कितना सुंदर है, उन सब जगह हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान 40 नंबर श्लोक में बोलते हैं, नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप एषतो देशता प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। भगवान कहते हैं, अरे भाई अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां, जितनी विभूतियां मैं तुमको बताई ना, ये तो बहुत कम है, बहुत संकेत मात्र बताया है, मेरी अनंत विभूतियां हैं। और भगवान 41 नंबर श्लोक में बोलते हैं, यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंस संभवम्। बोलते तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य संसार में जो दिख रहा है, सौंदर्य, तेजस्वी सृष्टि, ये सब मेरे तेज से एक स्फुलिंग निकला हुआ है। मतलब जैसे आग लगती है तो आग से कैसे एक छोटा सा आग का टुकड़ा निकल जाता है, चिंगारी अलग निकल जाती है ना, कभी कभी समझ लीजिए भगवान उस आग के समान है, और ये जो मैंने बताया है सब उस चिंगारी के समान है। भगवान कहते यद्यद्विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित मेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। और भगवान कहते हैं अर्जुन मैं तुमको और क्या बताऊं, अथवा बहुनहतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुना विष्टव्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। अर्जुन ये सारे ज्ञान के तो बात छोड़ो, इसकी आवश्यकता ही नहीं थी बताने की, तुम इतना समझ लो मैं अपने एक अंश मात्र से, केवल एक अंश से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यक्त हूं और इसको मैंने धारण किया हुआ है, इसको मेंटेन कर रहा हूं। अर्जुन के पास कोई प्रश्न नहीं था क्योंकि अर्जुन जानता है परम धाम पवित्र परम भगवान, इस संसार में जो लोग रहते हैं उनको भगवान के ऊपर फेथ नहीं है, इसलिए अर्जुन भगवान से, अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति आपको जान सकता है और आपके ऊपर मेडिटेट कर सकता है। हाँ, तो जब तक हम भगवान की जो स्वीट फॉर्म है, मतलब दो हाथों में बांसुरी बजा रहे हैं, उससे अटैच नहीं होते हैं, हमें भगवान की विभूतियों को स्मरण करना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान 82 विभूतियों के बारे में बताते हैं, तो मैंने आपको लिस्ट दिखाई। भगवान कहते हैं मैं सबका जनक हूं, कोई भी मेरे बिना नहीं रह सकता, सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो विभूति है ये तो मैंने तुमको एक संकेत दिया है। जैसे भगवान कालिया के ऊपर जब डांस करते हैं, कालिया नाग के ऊपर जब भगवान डांस करते हैं, वो डांस जो है सबसे स्वीट डांस है। वो आजकल हम लोग जो इधर उधर डांस देखते हैं वो सब उसका एक अंश मात्र है। हर चीज में भगवान जो है सोर्स है, जैसे कोई कला है तो उसमें भगवान स्रोत है, जैसे डांस, कोई ज्ञान है जैसे आयुर्वेद, तो भगवान उसके भी स्रोत है। भगवान कहते हैं ये सब मेरी विभूतियों का केवल एक अंश है। राधा रानी के अंदर 64 कलाएं हैं, राधा रानी 64 कलाओं को धारण करने वाली हैं, उनसे कलाएं जो हैं स्वर्ग में आती हैं और उनसे कम कलाएं जो हैं और कम वो जो हैं भूमि लोक में आती हैं। तो हम देखते हैं कि कभी कभी संसार में बहुत सुंदर कोई नृत्य करता है, तो समझना चाहिए अभी संसार से ज्यादा सुंदर नृत्य स्वर्ग में होता है और स्वर्ग से ज्यादा सुंदर जो है आध्यात्मिक जगत में होता होगा। तो भगवान कहते हैं ये सब मेरी छोटी सी शक्ति से मैनेज हो रहा है ब्रह्मांड पूरा। जैसे कुकुर मुत्ता होता है ना मशरूम, उसको बच्चे लोग उठा लेते हैं ना, भगवान कहते हैं ऐसे बिल्कुल इजीली, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, बड़ी मेहनत नहीं लगती है। आप लोगों ने एक वो देखा है एटलस साइकिल पे, एक एटलस देवता बना होता था, वो एटलस देवता जो है पृथ्वी को अपने सिर पे धारण किया होता था और बहुत ताकत उसको लग रही होती थी, ऐसा लगता था दबा जा रहा है पृथ्वी के नीचे। भगवान को ऐसा कुछ नहीं है, उनको कुछ ताकत नहीं लगती इसको मैनेज करने में, बिल्कुल इजीली मेंटेन करते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को इस अध्याय में अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया। अभी अगले श्लोक में, अगले अध्याय में भगवान अर्जुन को अपना उस रूप का दर्शन कराएंगे जहां से शक्तियां प्रकट हो रही हैं। तो विश्व रूप दिखाएंगे भगवान अर्जुन को, उसमें सब कुछ दिखाई देगा। उस चैप्टर का नाम है विराट रूप या विश्व रूप, हम लोग उसको जो है चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्णा।